पैराग्राफ चेंज। जहां तक लोक व्यवस्थापक के रूप में गोस्वामी जी के कर्तृत्व का प्रश्न है, व्यक्ति के रूप में वे जितने पारदर्शी और स्वीकार्य हैं, कवि के रूप में जितने विदग्ध, बड़ी हैसियत के कवि और एक विशाल पाठक समाज तक संप्रेष्य और मान्य है, उनका लोक व्यवस्थापक का रूप उतना ही विवादास्पद है, आपत्तियों और आरोपों के दायरे में आता है। उनके राजनीतिक दार्शनिक विचार नहीं, लोक व्यवस्थापक के रूप में उनका लोक धर्म, उनकी सामाजिक सोच के कुछ पहलू, उनके समाज दर्शन का एक हिस्सा इन विवादों, आरोपों और आपत्तियों के मूल में है। जाहिर है कि लोक व्यवस्थापक के रूप में गोस्वामी जी के लोक धर्म और सामाजिक सोच से उपजी उनकी विवादास्पद धारणाओं ने उनके व्यक्ति, भक्त और कवि की पारदर्शी, प्रशस्त और महनीय छवि को भी आहत और क्षतिग्रस्त किया है। उनके समग्र अवदान पर, उनके मूल्य और महत्व पर अपने निशान छोड़े हैं। अपने लोक व्यवस्थापक के रूप में उन पर पुराणपंथी, यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी होने जैसे आरोप लगे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि उनके अलोक व्यवस्थापक रूप से जुड़ी उनकी विवादास्पद सामाजिक सोच के उन पहलुओं को उनकी प्रामाणिकता में जाने। आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक अपनी किताब में उनके लोक धर्म, मर्यादावाद आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया है। यही नहीं, उनके जिन पक्षों पर आपत्तियां उठी हैं, गोस्वामी जी की ओर से उनकी सफाई भी दी गई है। गोस्वामी जी के लोक धर्म, उनके समाज चिंतन के ऐसे पक्षों पर जो विवादास्पद है, हम आचार्य शुक्ल के लिखे हुए के साक्ष्य पर ही अपनी बात कहेंगे। पैराग्राफ चेंज। शुक्ल जी के लिखे हुए को ही आधार और प्रमाण माने तो गोस्वामी जी को आर्य शास्त्रानुमोदित, वेद विहित वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था पूरी तरह मान्य है। वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था पर जो वेद शास्त्र विहित है, किसी भी तरह की आपत्ति को वे लोक विरोधी मानते हैं। वर्ण व्यवस्था के तहत विविध वर्णों का जो विधान है, उनके अधिकार तथा कर्तव्यों का उनमें जो उल्लेख है, उच्च वर्ण और निम्न वर्ग की जो व्यवस्था या विभाजन है, गोस्वामी जी उन सब के अक्षरशः पालन के हिमायती है। लोक धर्म का आदर्श उनके अनुसार तभी स्थापित होगा जब विविध वर्णों के लोग अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वाह करेंगे, उन्हें अपने आचरण में उतारेंगे। ऐसा न करने वाले वे किसी भी वर्ण के हो, उनकी कठोर आलोचना के पात्र बने हैं। विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस में जिस कली काल का वर्णन उन्होंने किया है, वह और कुछ नहीं, विविध वर्णों का उच्च और निम्न दोनों का निर्दिष्ट कर्तव्यों से च्युत होना, उनका पालन न करना ही है। ब्राह्मण अहंकारी हो जाए, क्षत्रिय राजलोलुप और शूद्र ब्राह्मणों की आग दिखाने लगे, यज्ञोपवीत धारण करने लगे, तो समाज नहीं चलेगा। ऐसा गोस्वामी जी का विचार है। वे चाहते हैं कि वेद शास्त्र विहित वर्ण व्यवस्था अपने चरम आदर्शीकृत रूप में लोगों के आचरण में उतरे। गोस्वामी जी की उपर्युक्त मान्यताओं पर टिप्पणी करें तो इस बिंदु पर तो बात समझ में आती है कि गोस्वामी जी वेद शास्त्र विहित वर्ण व्यवस्था से जुड़ी मर्यादाओं, विधि निषेधों, कर्तव्यों के विधान आदि को अक्षरशः मानते हैं और उनके अनुरूप आचरण के आकांक्षी हैं। पृष्ठ संख्या 235। परंतु लोक व्यवस्थापक के अपने इस रूप में कभी कभी वे इतने अनुदार और कट्टर हो गए हैं कि अपनी मान्यताओं से भी अलग ऐसे विचारों के उद्घोषक बन गए हैं, जिन्हें डिफेंड करने में, जिनके बारे में सफाई देने में शुक्ल जी जैसे उनके पक्षधर आचार्य को भी असुविधा ही हुई है। मसलन, गोस्वामी जी की यह उक्ति उनके अपने लिखे हुए के विरोध में ही जाती है कि पूजित विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, अर्थात ब्राह्मणशील और गुण से रहित हो तब भी पूज्य है और शूद्र ज्ञानी और गुण होने पर भी निम्न है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, लोक मर्यादा की दृष्टि से निम्न वर्ग के लोगों का धर्म यही है कि उन पर श्रद्धा का भाव रखे, न रख सके तो कम से कम प्रकट करते रहे। गोस्वामी जी का सोशल डिसिप्लिन समझिए। इसी भाव से उन्होंने प्रसिद्ध नीतिज्ञ और लोक व्यवस्थापक कौटिल्य का वचन अनुवाद करके सामने रख दिया, पतितो अपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः गोस्वामी जी का लोक व्यवस्थापक रूप समाज या लोक व्यवस्था के अनेक बिंदुओं पर उनके प्रशंसकों पक्षधरों तक कुछ असुविधा में डालता है। प्रसंगतः कही गई बातों पर ध्यान न भी दे तो भी गोस्वामी जी अपने समान चिंतन में वेद और शास्त्र के चौहद्दियों के दायरे में ही हैं। केवट सबरी प्रसंग आदि की चर्चा कर कुछ लोगों ने सूत्रों के प्रति गोस्वामी जी की उदार भेदभाव रहित मनोभूमि की ओर ध्यान खींचा है। इस बारे में हमारा कहना है कि केवट सबरी आदि भी तभी तक गोस्वामी जी की संवेदना के दायरे में है जब तक वे राम भक्त हैं, अपने वर्ण धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं। राम भक्ति के दायरे के बाहर या वर्ण धर्म के दायरे से बाहर होने पर गोस्वामी जी की संवेदना के पात्र वे नहीं रहते। यह भी कि राम भक्ति के दायरे के भीतर रहते हुए भी उन्हें अपने निम्न वर्ण होने का पूरा एहसास है। वे इसे अपना अहोभाग्य मानते हैं कि नीचे वर्ण के होने पर भी वे राम की कृपा पा सके। गोस्वामी जी की मनोभूमि का बुनियादी सत्य वही है जिसे हमने ऊपर रेखांकित किया है। पैराग्राफ चेंज। एक अन्य मुद्दा जिसके संदर्भ में गोस्वामी जी विवाद और आपत्तियों के दायरे में हैं, स्त्री जाति संबंधी उनके विचारों से संबंधित। गोस्वामी जी की कुछ एक उक्तियों के आधार पर उन्हें स्त्री निंदक मानना कहाँ तक समीचीन है, इस प्रश्न पर विचार करना भी जरूरी है। आचार्य शुक्ल ने शूद्रो विषयक अपने विचारों के साथ स्त्री विषयक अपने विचारों पर भी विस्तार से लिखा है, पृष्ठ संख्या 236। उन्हीं के लिखे हुए को प्रमाण मानते हुए इस मुद्दे पर भी हमें अपनी बात आगे विशद करेंगे। पहले आचार्य शुक्ल का अभिमत देखें। शुक्ल जी लिखते हैं, तुलसीदास जी कट्टर मर्यादावादी थे। पुरुषों की अधीनता में रहकर गृहस्थी का कार्य संभालना ही वे स्त्रियों के लिए बहुत समझते थे। उन्हें घर से बाहर निकालने वाली स्वतंत्रता को वे बुरा समझते थे, पर यह भी समझ रखना चाहिए कि जिमी स्वतंत्र होई बिग रही नारी कहते समय उनका ध्यान ऐसी ही स्त्री पर था जैसी कि साधारणता पाई जाती है, गार्गी और मैत्रेयी की ओर नहीं। उन्हें गार्गी और मैत्रेयी बनाने की चिंता उन्होंने कहीं प्रकट नहीं की है। हाँ, भक्ति का अधिकार जैसे सबको है वैसे ही उनको भी है, पर उन्हीं को जिन्हें भक्ति मार्ग में पक्का समझेंगे। सभी स्त्रियां घरों से निकलकर वैरागियों की सेवा में लग जाएं, यह अभिप्राय उनका कदापि नहीं। डॉट 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 उन पर स्त्रियों की निंदा का महापातक लगाया जाता है, पर यह अपराध उन्होंने अपनी विरति की पुष्टि के लिए किया है। उन्हें उनका वैरागीपन समझना चाहिए। सब रूपों में स्त्रियों की निंदा उन्होंने नहीं की है, केवल प्रमदा या कामनी रूप में, दाम्पत्य रति के आलंबन के रूप में की है, माता पुत्री भगिनी आदि के रूप में नहीं। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री जाति के प्रति उन्हें कोई द्वेष नहीं था। अतः उक्त रूप में स्त्रियों की जो निंदा उन्होंने की है वह अधिकतर तो अपने ऐसे और विरक्तों के वैराग्य को दृढ़ करने के विचार से। गोस्वामी जी की जो उक्ति ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकारी, उनके स्त्री निंदक होने के पक्ष में विशेष रूप से उद्धृत की जाती है। उसके बारे में शुक्ल जी की सफाई है कि इस उक्ति से लोगों के चिढ़ने के कारण है ताड़न शब्द, जो ढोल शब्द के योग से अलंकारित चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लाया गया है। स्त्री का समावेश भी सुरुचि विरुद्ध लगता है, पर वैरागी समझकर उनकी बात का बुरा न मानना चाहिए।